जय माँ। अब हम लोग योग समन्वय की योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज इसके संबंध में अंतिम दो चैप्टर 27वें चैप्टर पे पहुँच गए। 28 चैप्टर हैं तो 27वां चैप्टर है हठ योग। अब हठ पिछली बार हम लोगों ने समाधि, फिर इस बार हठ योग और राजयोग, ये दो और चैप्टर हैं। तो अब हठ योग से हमारे मन में जो, और अच्छा है ये योग दिवस के बिल्कुल करीब है ये स्पॉन्टेनियसली, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। लेकिन आमतौर पर जब हम लोग योग की बात सोचते हैं तो हम हठ योग की बात करते हैं, और हठ योग की भी नहीं एक्चुअली, हम लोग केवल आसन भी नहीं, क्योंकि आसन का जो मूल है वो बिल्कुल अलग है योगिक मूल। हम लोग थोड़ी हेल्दी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। पर हठ योग जो ओरिजिन है इसका, हठ योग का ओरिजिन है ये तांत्रिक योगी और भी अन्य प्रकार के, तो एक तो उनका कारण था कि वो स्वस्थ, क्योंकि उस समय आपको स्वस्थ रहना आवश्यक है, आप कुछ भी योग साधना में लगेंगे, एक तो ये था। दूसरा, शरीर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पास हमेशा है, हर किसी के लिए माइंड और माइंड को कंसंट्रेट करना, या हृदय हृदय में भाव उनको मोड़ना, भगवान का काम, ये सब कठिन होता है, लेकिन शरीर आप हमेशा एक यान है, वाहन है, यंत्र है, तो वो एक हैंडी चीज़ है जिस पर आप काम कर सकते हो। तो बहुत पुराना है, प्राचीन है हठ योग, और इसमें हठ इज नॉट हठ करके कोई चीज करना है, दैट्स नॉट व्हाट इट मींस। तो इसमें सूर्य और चंद्र नाड़ी की बात है, और मुख्य रूप से ये शरीर को यंत्र बना के, तो अगर हम योग को देखें तो ये एक इवोल्यूशनरी ग्रेडेशन बनता है इससे। तो हठ योग में शरीर है जो मुख्य आपका इंस्ट्रूमेंट है योग के लिए, और प्राणायाम भी है, प्राण को इंक्लूड करते हैं, जो ओरिजिनल हठ योग सिस्टम है उसमें प्राणायाम इसमें इंक्लूडेड है। फिर आता है राजयोग, जो माइंड को मुख्यतः, वो माइंड को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करता है। फिर आता है त्रिमार्ग, जो अब अध्यात्म योग की तरफ जा रहा है, जिसमें आप भाव प्राण, यानी जो हमारे कर्म हैं, भाव कर्म यानी संकल्प, और साथ में ज्ञान, इन तीनों को उपयोग में लाया जाता है, ये गीता में हम देखते हैं। उसके भी और आगे जाएं तो शेरविन सुप्रामेंटल योग की बात करते हैं, जहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है, यानी अब वहाँ पर डिवाइन आपके लिए योग कर रहे हैं। तो ये एक पूरा एक ग्रेडेशन है, जब हम शरीर को माध्यम बना के योग कर रहे हैं तो वो हठ योग है, जब हम माइंड को, मन को, मन की कैपेसिटीज़ हैं उसको माध्यम बना के, जब हम मेंटल विल को माध्यम बना के जब योग कर रहे हैं तो वो राजयोग है। ये दोनों पुराने हैं, क्योंकि ये शुरू में मनुष्य उसके ही प्रति सचेत होता है, फिर जब आप इनर बीइंग के प्रति सचेत होते हैं कि नहीं, हमारे संकल्प भी हैं, भावनाएँ भी हैं, हमारे विचार और विचारों की उड़ान है, तब ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और उसके बाद गीता, जो समन्वय का योग, ये सब आते हैं। और उसके आगे, अगर इसके भी आगे, क्योंकि गीता कहाँ, गीता का अंत वहाँ होता है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, कि अब भगवान तुम्हारे लिए योग करेंगे। तो जब हमारी आंतरिक विकास उस डिग्री तक आ जाती है जहाँ हम पूरी तरह आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं, शेरविंद यही कहते भी हैं कि इस योग का प्रारंभ आत्मसमर्पण से होता है, जो गीता का एक अंतिम महावाक्य है, तब ये शेरविंद का योग, जिसको हम आध्यात्मिक या अतिमानसिक योग कह सकते हैं। तो ये एक पूरी ग्रेडेशन है, ये ऐसा नहीं है कि जो उच्चतर योग हैं या बाद में आए वो इसको नहीं ले सकते, ले सकते हैं लेकिन आवश्यक नहीं है। तो लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि शेरविंद ने जब योग समन्वय लिखा तो उन्होंने ये सारी चीज़ें, योग की पूरे ज्ञान को हम सबके सामने प्रकट किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शेरविंद कह रहे हैं कि उनके योग में मैंडेटरी है कि आप आसन और प्राणायाम करें, मैंडेटरी नहीं है। वो तो ध्यान के भी आगे की बात करते हैं, ओपन टू द मदर, गो स्टेप्स वन स्टेप फर्दर, लेकिन फिर भी ये आवश्यक है इनके बारे में जानना, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी और शेरविंद के योग में भी, इस कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाता है, क्योंकि शरीर अगर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा हमारे प्राण की शक्ति को, हमारे मन के और आत्मा की प्रगति को, तो उसका तो आपको करना ही है कोई ना कोई इलाज, उपचार या उपाय। अब एक चीज इसको पढ़ने के पहले, सीमा का एक कन्वर्सेशन है जिसमें वो कहते हैं कि वन मे डू हठ योगा एंड राज योगा बट नॉट बी इन येट स्पिरिचुअल, स्पष्ट रूप से। तो अब यहाँ पर एक समस्या शुरू होती है। तो कहने का अर्थ ये कि उनके द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है, आप नियम से हठ योग के सारे आसन कर रहे हैं, बट यू मे नॉट बी स्पिरिचुअल. अगर हम इसको अपने स्क्रिप्चर्स में जाके देखें तो रावण से बड़ा हठयोगी कौन था, लेकिन इट डजंट मीन ही वॉज स्पिरिचुअल. राजयोगी भी था रावण, उसकी मेंटल कंसेंट्रेशन, मेघनाद इत्यादि को इतनी पावर्स थी उनको जो आई थी. हठयोग और राजयोग से बहुत सारी शक्तियाँ हमारे उसमें आती हैं, परिधि में. पर इसका अर्थ ये नहीं कि इट इज़ नेसेसरली लीडिंग अस टू स्पिरिचुअल इवोल्यूशन. ये हमें पता होना चाहिए. ये नहीं कि ये ना करो, करो, लेकिन उसकी शक्तियों को फिर भगवान के हाथ में रख दो. और यही हम अंतर देखते हैं कि अब रावण ने भी किया है हठयोग, और अंगद ने भी किया है, हनुमान ने भी किया है. हठयोग हमारी सबसे पहली, क्योंकि बॉडी के साथ कनेक्शन सबसे पहले होता है. अंगद पाँव रख देते हैं तो रावण नहीं उठा पाता है. इट इज़ ए सिद्धि ऑफ हठयोग. इसको कहते हैं गरिमा. उसमें आप इस हद तक भार भारी बना सकते हो कि वो आपके शरीर हिलाए ना हिले, तो ये अंगद की सिद्धि थी. हनुमान जी के अंदर लगीमा, शरीर को इतना आप हल्का बना सकते हो कि रुई की तरह उड़ जाए, तो ये सिद्धियाँ होती थी जो स्पष्ट रूप से उनके अंदर ये थी, अंगद के अंदर, हनुमान जी के अंदर. बिकॉज इट्स अ वेरी अर्ली ह्यूमैनिटी जो शरीर से बहुत जुड़ी हुई है. रावण के अंदर भी थी, काफ़ी ऐसी सिद्धियाँ थी. पर रावण और मेघनाद अगर प्रॉपरली देखा जाए तो राजयोगी थे. माइंड की पावर्स और उसमें व्याप्ति, प्राकाम, ये सब चीज़ें कुछ हद तक उनके अंदर, लेकिन उनका पतन हुआ. पतन हुआ क्योंकि अहंकार था, पतन हुआ क्योंकि कामना वासना को विजय नहीं कर पाए, तो इसलिए उनका पतन हुआ. तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है इसके पहले कि हम लोग पढ़ें. आज जिसको हम हठयोग कहते हैं वो हठयोग नहीं है वास्तव में. दे आर आसनाज, आसन, नॉट योग आसन. आई डोंट कॉल देम योग आसन, ना मैं उसको योग कहता हूँ. क्योंकि योग का जो लक्ष्य है वो है युक्त होना. और युक्त होना किससे? ईश्वर के साथ या हाईएस्ट ट्रुथ के साथ, किसी ना किसी रूप में. तो अगर आप केवल एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है. इट्स गुड, हेल्थ के लिए कोई भी चीज़ अच्छी है. लेकिन जब हम ये शब्द यूज़ उपयोग में लाते हैं योग, तो हमको ये सचेत होना चाहिए कि योग क्या है वास्तव में. क्योंकि अगर भारतवर्ष से ही योग का एक गलत अंडरस्टैंडिंग, गलत मैसेज जाएगा तो बाकियों की तो बात ही क्या. एक बार की बात है, छोटा सा, इट्स ए जोक बट ए रियल स्टोरी. रोज सुबह हम लोग जाते थे 5:30, 5:45 बजे, सेंटर था बेंगलोर में. तो वहाँ जाके हम लोग, शेरविन के रिलिक्स भी थे, तो जाके पोछा करना, चित्र वगैरह साफ करना, फिर उसके बाद पुष्प वगैरह सजाना, जैसे यहाँ पर होता है. उसके बाद हम लोग थोड़ी देर ध्यान करके वापस आते थे. तो एक दिन जैसे ही मैं लिफ्ट में प्रवेश कर रहा हूँ, हमारे एक और मित्र मतलब उसी कॉलोनी में रहते थे, विंग कमांडर साहब, तो उन्होंने भी कहा, अरे सुबह सुबह आप रोज़ जाते हो और आते हो. मैंने कहा हाँ. बोले कहाँ? मैंने कहा शेरविन भवन. तो कहते योगा करने. तो अब मैं समझ नहीं आया क्या बोलूँ. तो उन्हें कहा नहीं नहीं बहुत अच्छी, क्योंकि अब आ रहा है ना 5वां फ्लोर. कहते नहीं बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहता है बॉडी के लिए एक्सरसाइज. तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है. अब उनको मैं क्या बताऊँ कौन सा योगा. उनको लगा मैं जाके कुछ आसन इधर उधर करके, प्राणायाम करके आ जाता हूँ. तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग. लेकिन भारतीय अगर इसमें भेद नहीं करते हैं तो थोड़ा मुझे दुख भी होता है. आसन इज नॉट नेसेसरली योगा और योगासन, पर अच्छा है, चलो इसी बहाने लोग यही समझ के करें. भगवान का खेल है. जो ओरिजिनल हठयोगी होते हैं, एक बेंगलोर में थे जिनको मैं जानता हूं, वो 8-8 घंटे केवल सूर्य नमस्कार करते थे. क्योंकि शरीर को मथना आसान नहीं है. और ये लेमुरियन किंग्स का योग है. योग कभी ऐसा युग नहीं रहा जब योग दिया नहीं गया मनुष्य को किसी ना किसी रूप में. वो अपने पूरे जीवन को केवल हठ योग में, नाथ योगियों को आप देखो पूरा वो लगा देते हैं. वो ऐसे नहीं है कि आधे घंटे हमने जी योगा कर लिया. दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग ऑनेस्टली. आधे घंटे हम योगा करके आ रहे हैं, योग तो नहीं, आप आसन करके आ रहे हो और आसन भी नहीं कर रहे हो. क्योंकि आसन की जो मुख्य चीज है आसन, आप शरीर की जो पोस्चर्स हैं, अलग अलग पोस्चर्स क्या हैं वो, ये पूरी एक आंतरिक विज्ञान है कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ गांठें पड़ी हुई हैं हमारे. आप देखिए लोगों को कई बार जगह जगह दर्द होता है आयु के साथ, बहुत सी चीज़ें लोग कहते हैं जमा हो गई, ये हो गई, अलग अलग थ्योरीज हैं इसकी. एक तो हमारी ओरिजिनल 3 गांठें हैं जिससे हम बंधे हुए हैं, हृदय, तभी आप देखिए हृदय में थोड़ी पीड़ा, थोड़ा ईगो के बाहर हो गया, अरे बहुत पीड़ा हो रही है कि हृदय बंधा हुआ है। माइंड थोड़ा सा, कोई माइंड के समझ के परी जाती है, हम जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं होती है, तो माइंड के अंदर भी कष्ट शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर भी। तो ये गांठें हैं, ये गांठें हमारी इसलिए बनी हैं ताकि हम अपनी, कहते हैं ना, कायदे में रहें, फायदे में रहें। कायदा क्या है कि भाई तुम ईगो की लाइफ है, ईगो के लिए जितना चाहिए भगवान ने दे दिया है। लेकिन योग इससे नहीं, अब जो योगी है वो संतुष्ट नहीं है इससे, वो चाहता है एक्सप्लोर करना कि इसके आगे क्या है, क्या संभावना है, क्या किया जा सकता है। तो वहां से योग की प्रारंभ होता है कि जहां मनुष्य की सीमाएं समाप्त होती हैं वहां योग का प्रारंभ होता है। और वो उसका आधार क्या है कि हमारे अंदर बहुत सी छुपी हुई संभावनाएं हैं, लेटेंट पॉसिबिलिटीज, उसको जागृत करना, एक्टिवेट करना, वहां से योग की यात्रा प्रारंभ होती है। तो फिर योग के द्वारा क्या होता है, ये गांठें खुलती हैं, पर पहले तो ऐसे नहीं खुलेंगी। आप किसी गांठ को खोलने देखिए, कई बार तो और उलझ जाता है व्यक्ति, उनका लच्छा जिसने खोला वो जानता है। तो अब क्या करते हैं योगी, वो कहाँ कहाँ गांठें हैं, ये बहुत ही इनका बड़ा ब्यूटीफुल सिस्टम है, उसके विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम चैप्टर पे केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन वो आप देखिए सर्टेन मूवमेंट्स, वो एक जगह जा करके वो अटक जाता है आपका, नहीं होता उसके आगे, करते हैं ना उसके आगे नहीं होता। तो ये नहीं कहा जाता कि आप जबरदस्ती सीधा कर लो, आप उस पोस्चर में वहां पर रुको। तो जब आप उस स्थिरता को लाते हो, आसन, आसन का अर्थ यही है, जब आप अलग अलग रूप से स्थिरता लाते हो तो वो धीरे 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 वो गांठें खुलती हैं। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो फिर हाथ पांव तोड़ के वो अलग बात है। और धीरे धीरे इसको बरसों घंटों लगाते हैं हठ योगी, यहां तक कि उसके बाद तो क्या क्या नहीं कर पाते हैं, बट दैट बिहाइंड दैट इज डिकेड्स ऑफ साधना। और तब वो इस तरह की चीजें करते हैं, और जहां पर आपका शरीर की ऊर्जा स्थित होती है, तब आप क्या करेंगे, जहां पे आपको पेन हो रहा है तो वहां पे आपकी ऊर्जा नहीं जा रही आगे, एक तरह से गांठ पड़ी है। अब आप उसको कॉन्सेंट्रेट करके केंद्रित करते हैं टुवर्ड द हायर गोल्स। अब धीरे धीरे वो आपकी जो विल है, संकल्प है, जो शरीर के ऊपर काम कर रहा है, वो गांठ खुलती है। और जब वो खुलती है तो एक ऊर्जा का अक्षय भंडार खुलता है, ठीक वैसे जैसे चाबी तो छोटी होती है कमरे को खोलने के लिए, लेकिन जब आपने खोल दिया तो एक बिल्कुल कमरे के अंदर क्या क्या है। तो इसी तरह से ये सिद्धियां, जिसमें मुख्यतः चार हैं, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये चार हैं जो मुख्य हठयोग की सिद्धियां हैं। लघिमा यानी बिल्कुल छोटे से छोटे हो जाना। अब उसको दिखाते हैं पिक्चर में, तो दिखाते हैं कि आप एंट जैसे हो गए, ये उसका अर्थ नहीं है। लघिमा ये कि आप इतने हल्के हो जाते हो कि आप ऑलमोस्ट उड़ सकते हो, वहीं से आती है उत्थापना सिद्धि। शेरविन ने तो ये एक्चुअली एक्सपीरियंस की थी, लेकिन हठयोग के माध्यम से नहीं की थी, वो अलग तरह का हठयोग था उनका, घंटों एक जगह खड़े रहना, बैठे रहना, स्पॉन्टेनियसली ही वॉज डूइंग इट। तो उसमें एक बार जेलर ने देखा कि उनका पूरा शरीर उठा हुआ था और लेफ्ट नहीं है एकदम, शेरविन तो साइंटिस्ट की तरह बताते हैं, नो नो इट इज नॉट ट्रू, उसने बताया कि वो रूफ को टच कर रहा था। उन्होंने कहा दैट्स नॉट ट्रू, द लेफ्ट नी वॉज रेज्ड अबाउट 6 inches एंड द राइट नी वॉज रेज्ड अबाउट 1 feet, बट रेज्ड इटसेल्फ इज स्ट्रेंज। तो लघिमा, फिर होती गरिमा। शेरविंद को जिन लोगों ने बाद में जब उठाया तो कहते उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इनका शरीर इतना भारी हो सकता है। तो गरिमा, फिर महिमा, उसमें आप इतने विशालता में प्रवेश कर सकते हैं चेतना की, ये चेतना की विशालता है जो सामने वाला अनुभव करेगा, इसमें यह नहीं कि आपका शरीर इतना बड़ा हो गया। महिमा और अनिमा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप, यू आर नोबडी एंड नथिंग एंड देयरफॉर यू पास थ्रू, ये चाइनीज सेइंग है इसके बारे में कि जब आपके सामने दीवार आती है तो आप क्या करोगे, कहती है चेंज एंड पास थ्रू। तो आप तो ये सारी सिद्धियां और भी हैं जो हठ योग से आती, प्राकाम में और भी हैं जिनकी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी चैप्टर 27 हठ योग। अब यहाँ फिर से एक बार योग को डिफाइन कर रहे हैं शेरविंद, पेज 528, 528, ऑल योगा इज इन इट्स नेचर एन अटेम्प्ट एंड एन अराइविंग एट यूनिटी विद द सुप्रीम। उससे कोई भी कम चीज को योग का नाम देना, वास्तव में दुनिया नहीं समझती वो अलग बात है, बट वी डू बिलीव दैट देर इज अ सुप्रीम कॉन्शियसनेस विद विच यू कैन यूनाइट. ये चीज क्रिश्चियन और इस्लामिक ट्रेडिशन नहीं है, क्योंकि वहां पे ड्यूअलिज्म है. हमारे यहाँ अद्वैत का मुख्य धारा है. ड्यूअलिज्म में क्या होता है, रिलीजन होता है. जहां प्रे करेंगे भगवान वहां है जो आपको ग्रांट करेगा. देर इज नो योग दैट वे. हालांकि वो अनकॉन्शियसली करते हैं, कुछ एक उनके जेस्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं कि वो योग से प्रभावित हैं. हो सकता है कभी ये धारा उठी हो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बाद में वो समाप्त हो गई. मेन स्ट्रीम में तो नहीं है. भारत में ये है कि आप सुप्रीम से भगवान के साथ एक हो सकते हो, और उसकी लॉजिक ये है कि भगवान केवल ऊपर नहीं बैठा है, भगवान आपके हृदय के अंदर है. चूंकि वो हमारे अंदर है, यू कैन बिकम वन विद हिम. तो योग इज अल्टीमेटली यूनियन विद द सुप्रीम. अब यहां यूनियन और यूनिटी दो शब्द यूज किए गए हैं. यूनिटी विद द बीइंग ऑफ द सुप्रीम, यूनिटी विद द कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम, यूनिटी विद द ब्लिस ऑफ द सुप्रीम. पूरी तरह सच्चिदानंद. और इफ वी रिप्यूडिएट द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट यूनिटी, एटलीस्ट एट सम काइंड ऑफ यूनियन. अगर हमको लगता है यूनिटी, तो यूनिटी मतलब कोई भेद नहीं बचा, तो यूनियन. यूनियन क्या होती है, एक संधि होती है कि अब हम इससे जुड़ गए हैं. यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनिटी एक हो गए हैं. तो अगर एक नहीं भी हो सकते हैं संधि. अब देखिए कैसे दिखाया गया है इसको. रामायण में एक पैरेलल स्ट्रीम चलती योग की. तो स्ट्रीम क्या है, क्या करते हैं सुग्रीव राम जी के साथ, संधि करते हैं. हनुमान जी की प्रेरणा से संधि करिए. अब क्या होता है संधि का परिणाम, जब आपकी वानर चेतना भगवान के साथ संधि यूनियन में आ जाती है, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. तो ये संधि यानी यूनियन या यूनिटी, जहां बिल्कुल तादाद में, ये दोनों चीजें. यूनिटी कुछ लोगों को बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, तो यूनियन, ये दोनों चीजें संभव है. यूनियन का क्या मतलब, सालोक्य. लिव इन वन स्टेटस एंड पेरिफरी ऑफ बीइंग विद द डिवाइन. भगवान जैसे ही, भगवान से एक नहीं, जो कुछ इंद्र की कहानी में भगवान जैसे ही बन जाना, या और इन ए सॉर्ट ऑफ इनडिविजिबल प्रॉक्सिमिटी, सामिप्य. आपको पता नहीं चल रहा है किसी को. अब देखिए वो माता सीता क्या करती हैं, जब रावण आता है सामने, वो थ्रेटन कर रहा है, तो क्या करती हैं, उठाती है त्रिण को, कहती इसको क्रॉस मत कर देना गलती से. अब वो देख नहीं पा रहा है कि कहाँ है. तो ये वैसे ही महिमा, तो आपके चारों तरफ वो चीज रहती है जो अनुभव आप भी करते हो, और यदि चाहे तो कोई और भी इसको अनुभव कर सकता है. इट इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. उस अवस्था में अगर आप कुछ कहते हो तो आसपास जो भी है परिवेश वो महसूस करता है उसको, बिकॉज यू आर इन ए स्टेट ऑफ यूनियन विद द डिवाइन, इफ नॉट यूनिटी. दिस कैन, अब आगे उसको बता रहे हैं कि दिस कैन ओनली बी गेन्ड बाई राइजिंग टू ए हायर लेवल एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस दैन अवर ऑर्डिनरी मेंटेलिटी पजेसेस. समाधि, क्योंकि पहले हम लोगों ने समाधि पर पढ़ा था कि इसमें तो इस घेरे में नहीं है वो, आपको इसके बाहर निकलना है. तो इस घेरे में तो पूजा हो सकती है, रिलीजन बन सकता है, लेकिन अगर आपको भगवान से एक होना है तो आपको इस माइंड के घेरे में, चेतना के घेरे से बाहर निकलना है, ऊपर उठना है. उसको समाधि, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, एज वी हैव सीन अदर ऑफर्स इट सेल्फ एज द नेचुरल स्टेटस ऑफ सच ए हायर लेवल एंड ग्रेटर इंटेंसिटी. तो उसमें क्यों है हायर लेवल और ग्रेटर इंटेंसिटी में समाधि, क्योंकि हम बेयर नहीं कर सकते उस इंटेंसिटी को. वो इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते जब वो जुड़ जाती है सुप्रीम के साथ, तो उसके बाद वो पूरी दुनिया, वो कहते हैं ना, शेरविंद एक जगह बताते भी हैं और भी जगह, सब जग जल हो जाए, आपको कोई उसका मेजर सब समा, एक पॉइंट आता है. तो वो समाधि, ये नहीं कि हर एक योग में आवश्यक है, बट ये यहां पे वो समाधि, हठ योग, राजयोग, इसकी बात कर रहे हैं. इट अज्यूम्स नेचुरली ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द योग ऑफ नॉलेज, बिकॉज देयर इट इज द वेरी प्रिंसिपल ऑफ इट्स मेथड एंड इट्स ऑब्जेक्ट टू रेज द मेंटल कॉन्शियसनेस इन टू ए क्लैरिटी एंड कंसेंट्रेटेड पावर बाई विच इट कैन बिकम एंटायरली अवेयर ऑफ लॉस्ट इन आइडेंटिफाइड विथ ट्रू बींग्स. योग ऑफ नॉलेज में, और ये नॉलेज के अंडर ये शेयर दे रहे हैं, ये आवश्यक है. बट देर आर टू ग्रेट डिसिप्लिन्स इन विच इट बिकम्स ऑफ एन इवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू दीज टू सिस्टम्स, टू राजयोग एंड हठ योग, वी मे वेल नाउ टर्न. सो ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग में समाधि का बहुत बड़ा. अब थोड़ा वो इंटेग्रल योग के बारे में भी कह रहे हैं, बाद में उसको विस्तार से बताएंगे. एट द सेम टाइम इट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर अस टू डू मोर देन रिगार्ड द स्पिरिट ऑफ देयर ग्रेडेशंस इन पासिंग, फॉर इन ए सिंथेटिक एंड इंटेग्रल योगा दे टेक ए सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. समाधिस्थ हो जाना, समाधि लग गई, इंटेग्रल योग में आवश्यक नहीं है. कहेंगे क्यों? क्योंकि राजयोग में आप चेतना से चढ़ के वहां उस सेल्फ के तरफ जा रहे हो. भक्ति में क्या कर रहे हो? भगवान आपकी ओर आ रहे हैं, आपके हृदय में प्रेम से जुड़ रहे हैं, भाव समाधि होती है, पर ये इंडिस्पेंसिबल. उसी तरह कर्म समाधि, आप समाधिस्थ अवस्था में कर्म कर रहे हैं. ये तो अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि जो समाधि में है उस किम भाषा, वो कैसा दिखता है, क्या बोलता है? तो श्री कृष्ण कोई ऐसा बाहरी उत्तर नहीं देते, कोई संकेत नहीं कि वो चुप बैठा रहता है, ये कुछ भी नहीं बताते हैं कि वो आलती पालती में बैठा है, नथिंग. ये कि भाई जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधिस्थ है, उसकी क्या. तो वहां पे सारे वो आंतरिक लक्षण देते हैं कि वो इम्पर्सनल होगा उसकी पूरी तरह उसके अंदर ज्ञान का स्रोत बहता रहेगा, उसके अंदर प्रेम जागृत रहेगा. लेकिन कौन सा प्रेम? विश्व बंधुत्व का प्रेम. ये सारे उनके इंटरनल साइंस होते हैं. छह लक्षण देते हैं, इक्वानिमिटी की बात करते हैं, कोई भी बाहरी लक्षण नहीं देते हैं. तो इसमें मुख्यतः ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग में समाधि का बहुत इंपॉर्टेंस है. लेकिन श्री अरविंद के योग में या गीता के त्रिमार्ग में इट एज ए वेरी सेकेंडरी. अगर हो लग गई तो लग गई, इसलिए सहज समाधि कहा गया उसको. अब करते करते अगर आप समाधि अवस्था हो गई तो हो गई, बट इट्स नॉट व्हाट इज सॉट. बट देयर एम्स हैव इनडीड टू बी इंक्लूडेड. उच्च चेतना में चढ़ना, भगवान से जुड़ना, ये है, लेकिन नॉट थ्रू दिस प्रोसेस. बट देयर मेथड कैन ईदर ऑल टूगेदर बी डिस्पेंस्ड विद और यूज्ड ओनली फॉर ए प्रीलिमिनरी और एल्स ए कैजुअल असिस्टेंस. मेथड ये बहुत फेमस, बड़ा इंटरेस्टिंग एक डायलॉग है जिसको आमतौर पे लोगों को समझना कठिन होता है. वो है जब गुरु नानक देव की गोरखनाथ से मुलाकात हुई. वो नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय में तो समाधि का बहुत बड़ा वो है, एक प्रकार का वो हठ योग, और हठ योग में आपकी ईगो भी बहुत बढ़ जाती है. पर वो उसको यूज़ करते हैं, दे डोंट कि हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल. लाइक जैसे अंगद ने पांव हटा दो, इट इज यूज्ड फॉर सम हायर पर्पस. तो गुरु नानक उनको ये वो जो सहज योग है वो बताते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग वेयर ही ऑलमोस्ट इनिशिएट तो नहीं कहा जा सकता, पर ही ऑलमोस्ट टर्न्स हिम टूवर्ड्स. गुरु नानक जी का योग कोई, अब सिखिज्म को अलग, रिलीजन अलग बात है, इट इज एन बिल्कुल पूरी तरह अगर आप देखें तो प्रचलित उसमें भक्ति और कर्म का मुख्य चीज, मुख्य धारा है. और कहते भी हैं वो सेवा और भजन कर, ये मेन चीज है, नाम जप और भजन कर, ये सेवा कर. तो मुख्य रूप से वो उसी से प्रभावित हुआ है. तो ये इंटेग्रल योग में भी. अब हम लोग हठ योग की ओर जाए. इंटेग्रल योग इससे और आगे जाता है, पर अब हठ योग पर फोकस है. हठ योग इज ए पावरफुल बट डिफिकल्ट एंड ओनरस सिस्टम हुज होल प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इज फाउंडेड ऑन एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सोल. द बॉडी इज नॉट टू द हठ योग इन ए मियर मास ऑफ लिविंग मैटर बट ए मिस्टिक ब्रिज बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड द फिजिकल बीइंग. एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए, श्री अरविंद का भौतिक रूपांतरण इज नॉट अबाउट टेकिंग अप हठ योग. वी मे और मे नॉट डू इट, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है. इसमें जो भी आपके शरीर के अंदर गांठें खुलेंगी वो ऊपर से नीचे डिसेंड करती हुई शक्ति से खुलेंगी. और इस तरह का योग आपको वेदों में भी देखने को मिलेगा. जो सूर्य शिव की कहानी है कि वो बंधा हुआ है स्टेक पर, उसको तीन बंधनों ने बांधा है, माइंड में, हार्ट में, माने हार्ट बोल के नहीं, माथे पर और चेस्ट पर और पाँव में. तो वो बंधा हुआ है सेक्रीफाइस के लिए, और तब वो वरुण देव को प्रार्थना करता है. तो वरुण आकर के उसके माइंड के पाश खोल के ऊपर की ओर फेंक देते हैं, जो चेस्ट का पाश है उसको खोल के चारों तरफ फेंक देते हैं, विशालता में प्रवेश कर जाता है. और जो नीचे पांव का पाश है खोल करके नीचे फेंक देते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें ये बिल्कुल अलग ढंग से हुआ, गांठें खुली लेकिन अलग ढंग से। लेकिन जो हठ योगी है उसके लिए शरीर, और इसीलिए वो शरीर का इतना ध्यान, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज सो इंपॉर्टेंट, उसको ट्रीट करते हैं, इज द टूल जिसके थ्रू आप, जैसे आप राजयोग करेंगे तो माइंड को आपको यम नियम इत्यादि, आपको एक टूल है, आप माइंड के साथ, ये नहीं कि मैं कुछ भी करूंगा। जैसे आजकल हो गया है ना ये फैशन कि आप आधे घंटे मेडिटेशन का कोर्स, दिस इज रियली नॉनसेंस। योग ऐसे नहीं किया जाता है, बट एनीवेज जिसको भाई पैसे कमाने हैं उसकी बात अलग है। पैसे लेकर के आप 3 दिन का कोर्स कर रहे हो, 7 डे कोर्स कर रहे हो, यू कैन नॉट डू हठ योग एंड राजयोग और एनी योग लाइक दैट। उसकी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, क्योंकि उसके प्रिलिमिनरी हैं, खासकर राजयोग और हठ योग में प्योरिफिकेशन, हर योग में, और वहां पे श्री अरविंद हमें ले जाएंगे। अब यहां पे वो ऐसी चीज बता रहे हैं जो हठ योगिन कहीं नहीं लिखते, पर उनका तो श्री अरविंद तो अपनी दिव्य दृष्टि की बात। हठ योगिन में भी समराइज्ड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इन फैक्ट द होल एम ऑफ द हठ योगिन में भी समराइज फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, दो ही वुड नॉट हिमसेल्फ पुट इट इन दैट लैंग्वेज। तो वो कह रहे हैं एज एन अटेम्प्ट बाई फिक्स्ड साइंटिफिक प्रोसेसेस। साइंटिफिक क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि एक तो भौतिक साइंस है और उसके पीछे एक अकल्ट साइंस है, प्ले ऑफ फोर्सेस, ऊर्जाओं का खेल। एज एन अटेम्प्ट बाई फिक्स्ड साइंटिफिक प्रोसेसेस टू गिव टू द सोल इन द फिजिकल बॉडी द पावर, द लाइट, द प्योरिटी, द फ्रीडम, The ascending scales of spiritual experience, शरीर में रहते हुए शरीर को ये आप द्वार बना देते हो इधर उधर खोल करके, ताकि आपको ये अनुभव हो सके सोल को। If it dwelt here in the subtle and the developed causal body, normally आपको वो अनुभव सूक्ष्म शरीर या causal body, मनो में शरीर में जाके मिलते हैं। हठ योगी कहता है मैं तो इसी में रह करके भगवान को अनुभव करूंगा, ये है। इट्स नॉट अबाउट रूपांतरण ऑफ द बॉडी, फॉर गॉड सेक, इट इज नॉट हठ योगा कि श्री अरविंद के योग में रूपांतरण के लिए, नॉट एट ऑल। होता तो माने बता दिया होता, होता है यहां पर भी हम लोग करते हैं, बट वी शुड नॉट मिस्टेक। माने चीज क्या है, करें जो चाहे हम करें, सबकी मर्जी है, अपनी फ्रीडम है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। अच्छी चीज है हेल्थ के लिए, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन वन शुड नॉट मिस्टेक कि ये फिजिकल रूपांतरण पे माने। एक बार मैंने सुना किसी ने कहा माने इतना फिजिकल रूपांतरण पे जोड़ दिया है तो यहाँ पे हठ योग मतलब वो आसन क्यों नहीं होते। मैंने कहा पहले तो आसन इज नॉट योगा, दूसरी बात है भैया जो चीज भगवान कर देते हैं ऊपर से आपके शून्य शेप की तरह तोड़ देते हैं गांठें, आप इतना कष्ट, पूरा कष्टपूर्ण है प्रॉपर हठ योग, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, इट्स नॉट हाफ एन आवर। वो ठीक है स्वास्थ्य के लिए, मोबिलिटी के लिए, इट्स वेरी गुड, यू नीड इट। अब अंत में वो कह रहे हैं यही बात, हठ योग ऑल्सो इज ए पाथ दो बाय ए लॉन्ग डिफिकल्ट एंड मेटिकुलस मूवमेंट दुखम आप्तम टू द सुप्रीम। क्योंकि आप बिल्कुल जहां जड़े हैं ना वहां से उखाड़ करके, लेकिन भक्ति क्या करती है, रस डालती है हृदय के, उससे जाके जड़ों में चला जाएगा। ज्ञान क्या करेगा, प्रकाश डालेगा, जैसे चीजें अपने आप खुलने लगेंगी। और सुप्रमेंटल योग तो जो करेगा भगवान करेंगे, मां करेगी, पर आपको खुले रहना है। जो प्रोसेस है वो जैसी भी हो आपको पूरी, इसीलिए श्री अरविंद अंत में एक ही चीज का एक ही शब्द लेते हैं, वो हम लोग करेंगे जब इंटेग्रल योग पर आएंगे, कल्याण श्रद्धा। इफ यू सी ऑल दैट ही मेनली एम्फेसाइज इन कल्याण श्रद्धा, जो भी आपके जीवन में हो रहा है श्रद्धा आपकी अडिग रहेगी, कल्याण, वो कल्याण ही है, ये आप रखेंगे, खुले रहेंगे, शी विल डू दैट। मतलब उस सेंस में ये एक इम्प्रोवाइज काफी आगे की चीज है। अब कहते हैं प्रत्येक योग में ये तीन चीजें मुख्य होती हैं, ऑल योगा प्रोसीड्स इन इट्स मेथड बाय 3 principles ऑफ प्रैक्टिस, प्योरिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन, लिबरेशन, ये तीन चीजें। अब मैं क्यों ये जो कोर्सेज होते हैं 5 दिन के 10 दिन के, व्हाई आई स्पीक सो मच अबाउट इट rather against it. आप बिना प्योरिफिकेशन के यू आर जस्ट कि भाई हम एक कोर्स सीख लेंगे इतना रुपया दे के, आपने आपके अंदर प्योरिफिकेशन नहीं है तो आपकी एनर्जीज मिक्स्ड हैं देवी, यू राउज देम. इट्स लाइक आपने घर में सीधा भगवान को बुलाने की चेष्टा की और सारी गंदगी एक साथ आपने उठा दी. यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. इसीलिए अब पतंजलि जी ने जब वो करते हैं तो कितना प्योरिफिकेशन पे उन्होंने स्ट्रेस किया, यम नियम निधिध्यासन सभी में है. प्योरिफिकेशन एक बेसिक है, उसका प्रोसेस अलग हो सकता है. तो इन तीनों को शेरविन डिफाइन करते हैं, प्योरिफिकेशन दैट इज टू से द रिमूवल ऑफ ऑल एबरेशंस. यहां मॉरल प्योरिफिकेशन की नहीं बात हो रही है. अंतर क्या है, मॉरली इट इज परफेक्टली फाइन टू हैव वट एवर लस्टफुल रिलेशन बिटवीन यू एंड योर वाइफ, मॉरली इट्स परफेक्टली सैंक्शन. हठ योगी कैनॉट एंगेज इन दैट. मॉरली इट्स परफेक्टली फाइन कि आप काम कर रहे हो, पैसा आपको मिल रहा है, आप बड़े खुश हो गए, भाई हम ईमानदारी का पैसा कमा रहे हैं. योगी नहीं कह सकता कि मैं ईमानदारी का पैसा, उसको तो इस भाव से जीना है कि मेरा है ही नहीं. समस्या है, मतलब योग गोज मैनी स्टेप्स फर्दर. तो जो भी ऑब्स्ट्रक्ट, उसमें मेन है ईगो एंड डिजायर, लस्ट भय माने का है भय, फियर इज द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी, ऑब्स्ट्रक्शंस ब्रॉट अबाउट बाय द मिक्स्ड एंड इरेगुलर एक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ बीइंग इन अवर फिजिकल मॉरल एंड मेंटल सिस्टम. ये जो मिक्सचर है उसको हटाना. और शेयरविंद देखिए कहते हैं, इट टेक्स एटलीस्ट 12 ईयर्स टू इवन द बेस्ट ऑफ योगिन्स एंड इन मेनी टेक्स मच लॉन्गर. पहले तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, हमने थोड़ी देर ध्यान कर दिया, थोड़ी पूजा कर दी, घंटी बज गई, थोड़ा आसन कर लिया, आज हमारा कुटस्थ पूरा हो गया योग का. बिना प्योरिफिकेशन के योग रियल सेंस, क्योंकि जो अनुभव होंगे भी ऐसा नहीं होंगे, पर वो अनुभव आपके चले जाएंगे, बिखर जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, दे विल नॉट स्टेबिलाइज, क्योंकि ये मुख्य समस्याएं डील नहीं हुई हैं. सेकेंड इज कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन का अर्थ क्या है, ब्रिंगिंग इट्स फुल इंटेंसिटी एंड द मास्टर्ड एंड सेल्फ डेवलप्ड डायरेक्टेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एनर्जी ऑफ बींग. इसका मतलब क्या हुआ, कंसेंट्रेशन ऐसा होना चाहिए आप भीड़ में भी, क्राउड में कंसेंट्रेट कर सको. माता जी ने एक बताया था ना किसी के साथ, कि कोई बड़ा मदर, आई गेट डिस्टर्ब बिकॉज वहाँ ऊपर बड़ी कारपेंटर बड़ा ठक 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 करता है. तो माँ ने कहा, माई चाइल्ड वन कैन कंसेंट्रेट ऑन द बैटल फील्ड. कंसेंट्रेशन तो ये होता है, आप कहाँ जहाँ करना है तो फिर आप जिसको करना होता है वो वेट, ये नहीं कि आप बैठ गए सड़क के बीचों बीच तमाशा बन के. आप कहीं पर भी, रेलवे स्टेशन हो, भीड़ भाड़ हो, बल्कि उसमें कई बार बहुत अच्छा होता है बिकॉज यू आर टोटली अनकनेक्टेड, बट इवन इन फैमिली लाइफ, इवन इन हाउस, एवरीवेयर यू कैन कंसेंट्रेट. तो कंसेंट्रेशन इज एन इंटेंसिटी जो डेवलप होती है, आपको पूरी चेतना को, ऊर्जा को संग्रहित करके जोड़ देती है लक्ष्य के साथ. और तीसरा है लिबरेशन. लिबरेशन का क्या अर्थ है, रिलीज ऑफ आवर बीइंग फ्रॉम द नैरो एंड पेनफुल नॉट्स ऑफ द इंडिविजुअलाइज्ड एनर्जी इन ए फॉल्स एंड लिमिटेड प्ले विच एट प्रेजेंट आर द लॉ ऑफ आवर नेचर. अब यहां पर शरीर की बात नहीं, एक जनरल है. तो लिबरेशन क्या होगा, फॉल्स एंड लिमिटेड नैरो पे, अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे बहुत दुख लग रहा है. आप दिनों दिन उस दुख में, आपको लगना ही नहीं चाहिए. माता जी से एक बार किसी ने लिख के पूछा था, मदर आई फील वेरी इंसल्टेड व्हेन समबडी सेज दिस दिस. तो माने का, माई चाइल्ड दोज हु टेक योगा डू नॉट फील इंसल्टेड. ये जिसको कहा था माने, उन्होंने स्वयं मुझे ये बात बताई थी ओवर प्रोमेनाद डिनर. मदर सेड कि माई चाइल्ड इफ यू वॉन्ट टू डू योगा यू कैनॉट फील इंसल्टेड. नॉट है ना लिमिटेड प्ले, मैं मिस्टर सो एंड सो, मैं फला फला, मैं ढिमका. और ये तो बड़े एक्सपीरियंस होते हैं आश्रम आते ही आपको पहले ही. यहाँ पर मेजर को, मैं नहीं, मेजर जनरल को मेजर कहने लगते हैं लोग. कह उनको लगता है भाई जनरल तो बड़ा आम कैटेगरी है, तो मेजर बड़ा बड़ा है. ऐसे से होते हैं, आप कोई पूछ ले कौन है तुम भाई, कहाँ जा रहे हो, आप वहाँ बोलेंगे ना हम सो एंड सो, कहते हैं अच्छा वो अपने पास में रखो पॉकेट में, आश्रम का गेट पास है कि नहीं वो दिखाओ. एक आए थे पाक गेस्ट हाउस की बात है, हमारे आर्मी के रिटायर्ड कर्नल, उन्होंने वहाँ बैठ के गप मारने की आदत होती है, आर्मी तो थोड़े ज़्यादा ही होती है, वो वार ये वार थे भी बेचारे, वो उन्होंने शुरू कर दी अपनी कहानी, तो पांच गेस्ट हाउस में जो बैठे थे, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा देखिए अभी आप ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप चुप रहिए हम अपना काम करें। उनको आके मेरे पास रोने लगे, बोले उन्होंने ऐसे बोला। मैंने कहा ठीक ही तो बोला, आप यहाँ अपनी कर्नल गिरी दिखाने आए हैं या आप भगवान को पाने आए हैं? उसने ठीक बोला, आपका इलाज किया तो मेरी तरफ, लेकिन बहुत इज्जत करते थे तो कुछ बोले नहीं। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए यही सब पकड़ के तो हम सीमित हो जाते हैं, आप जीवन भर केवल एक रिटायर्ड कर्नल रहना चाहते? बोले नहीं। मैंने कहा तो फिर छोड़िए। तो देखो यही है, लिबरेशन इज दैट। ये जो फॉल्स आइडेंटिटी जिससे हम चिपके रहते हैं, कोई आपके शरीर को देख के बोल दे अरे बड़े अजीब लग रहे हो, 75 के लग रहे हो, 80 के लग रहे हो, या कम लग रहे हो, या काले लग रहे हो, गोरे लग रहे हो, अरे क्या है को भाई, क्या फर्क पड़ता है, बीमार लग रहे हो। ये भी, सो यू आर फ्रीड फ्रॉम ऑल दैट इज लिबरेशन। आप तो मूर्ख हो, ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या हो, ये भगवान की प्रॉब्लम है, हमारी भी नहीं है, ये प्रॉब्लम भगवान की है कि आप क्या हो, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। किसी और, कोई और अगर इस प्रॉब्लम को लेके, आपकी प्रॉब्लम लेके वो अपने दिमाग में चला रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है कि भाई तुम्हें यही लग, तुम अब तुम पूरे जीवन मेरे ऊपर ही मेडिटेट करते रहो। कि आप तो बड़े मूर्ख हैं, अच्छी बात है, आप कम से कम मूर्खता के सत्य को तो रियलाइज कर ही लोगे। इट इज लाइक दैट, यू आर फ्रीड, दैट इज कॉल्ड लिबरेशन। अब उसमें बताते हैं कि आसन और उससे प्राणायाम जुड़ा हुआ है, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। द हठ योगिक सिस्टम ऑफ आसन, अब इसमें कहते हैं कि बहुत सारी से लाभ होते हैं, जैसे फिजिकल नेचर जो लिमिटेड है, लिमिटेड लाइफ एनर्जी, जब वो आपको ज्यादा लाइफ एनर्जी तो हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है आपके अंदर बहुत जल्दी, क्योंकि अधिकतर रोग क्यों टिके रहते हैं शरीर में, क्योंकि आपके गांठें लगी हुई हैं। आप जब खोल देते हो प्राणिक ऊर्जा का स्रोत तो आपको हील करता है, और ऐसे ढंग से हील करता है कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि ये चीज कैसे ठीक हो गई। तो वो अंदर ही आपकी हीलिंग कैपेसिटीज हैं, लेकिन वो बंद हैं, ब्लॉक्ड हैं। तो डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर तो खोलेगा नहीं ना एनर्जी, उसको तो अपना एनर्जी खोलना है, तो वो आपसे आइए 15 दिन में दवाई लेते जाइए, फीस वहां जमा कर दीजिए। अब वो बेचारे को अपने बच्चों का देखभाल करना है। लेकिन आप अंदर में कर सकते हो। तो हठ योगी इज वन ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द बॉडी कैन बेयर मच मोर। फिर इम्प्योरिटी जाने लगती हैं, जो सारे इम्पैक्ट होते हैं दुनिया के, वो इस रथ पे छाप छोड़ते हैं, वो सब हठ योगिन के अंदर से, बिकॉज द फ्लो ऑफ एनर्जी। विद ऑल दिस हठ योगा हैज टू डील। द हठ योगिक सिस्टम ऑफ आसन हैज एट इट्स बेसिस टू प्रोफाउंड आइडियाज विच ब्रिंग विद देम मैनी इफेक्टिव इम्प्लीकेशंस। द फर्स्ट इज दैट ऑफ कंट्रोल बाई फिजिकल इमोबिलिटी, द सेकेंड इज दैट ऑफ पावर बाई इमोबिलिटी। तो आसन का अर्थ ये होता था, जो ओरिजिनल आसन करने वाले बहुत कम हैं, इसीलिए मुद्राएं आती थी, बंद आते थे, ये सब इसका हिस्सा था, पैकेज है। तो उसमें आप जब, अगर आप उसमें टिक गए तो फिर क्या होता है, वो अपने आप उसके अंदर चीजें खुलती हैं और हायर एनर्जी नहीं बट ग्रेटर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब वहां पर बताते हैं कि हमारे प्राण के बारे में भी, योगिक पैसिविटी वेदर ऑफ माइंड और बॉडी इज ए कंडीशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंक्रीज पोजिशन एंड कॉन्टिनेंस ऑफ एनर्जी। बैठा हुआ है, यही 36 चेम्बर्स ऑफ शाओलिन जिसकी कहानी हम लोग उस दिन कह रहे थे, वो बैठा हुआ है लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी का एक्युमुलेशन है ना, वो फूंक से उड़ा सकता है। और हठ योगियों ने किया हुआ है, ये राममूर्ति देखिए उन्होंने क्या, उनको तो लिटरली भीम, कलयुग का भीम कहते थे, उपाधि दी गई थी, और क्या किया था उन्होंने, इम्पॉसिबल सफीट, जब, और वो अपनी श्वास को रोक लेते थे पानी के अंदर भी जा करके बहुत देर तक। तो वो इम्पॉसिबल सा फीट उन्होंने स्पेन में किया, बुल फाइट में। लोगों ने उनको कहा कि आप बुल फाइट में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो बेचारे जीव को क्यों, वो बेचारे जीव की सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर भी जब बहुत भारत का, तो भारत की बात बोली तो ही गॉट इन, ठीक है भारत की अगर बात होगी तो ही गॉट, ही स्टूड। आप देखिए, आपने देखी होगी बुल फाइट, आई थिंक बाय एंड लार्ज एवरीबॉडी इज कन्वर्सेंट, ये रियल स्टोरी है, आप विकीपीडिया पे जाके सर्च कर लीजिए। तो वहां से बैल भागता हुआ आ रहा है, ये वहां खड़े हुए ऐसे करे खड़े हुए। बैल एकदम करीब आ गया, इन्होंने हाथ बढ़ाया उसको रोक दिया, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट हाथ ऐसे टर्न किया, गिर पड़ा। उसके बाद ही डिडंट हैव द हार्ट टू डू एनीथिंग मोर। दैट्स हाउ ही गॉट द उपाधि ऑफ कलयुग का भीम। अब भीम क्या करते होंगे आप कल्पना कर लीजिए। और ये सब उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी जब वो नागलोक जाते हैं पानी के अंदर जलमग्न की। ये दुर्योधन को भी ये प्राप्त थी ब्रेथ पर इतनी मास्टरी, क्योंकि आप ब्रेथ क्या है, ब्रेथ एक डिवाइस है, वो भी श्री अरविंद यहां बता रहे हैं। इनएबिलिटी टू होल्ड बॉडी कैसे आती है, आप देखेंगे कि जो शुरू शुरू में ये बहुत लोगों के साथ होता है, इवन वेन दे रीड श्री अरविंदो पांव हिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप बिना हिले काम नहीं कर सकते हैं। बंदरों की ये पहचान होती है कि हिलेंगे। मतलब आप देखो जुजू के अंदर कोई जीव इतना हुलचुल नहीं करता है जितना बंदर करता है। उसको कोई ये नहीं कि आपने फ्रूट दिया ऊपर से नीचे, वो कुछ करता रहेगा बेचारा। उसको उसका बंदर की पहचान है, वो ऊर्जा को क्यों नहीं, नहीं देर इज ए लॉजिक बिहाइंड इट। बंदर एक ट्रांजिशन हो रहा है उसके अंदर, मन की ऊर्जाएं आ रही हैं। अब उसको मन का क्या करेगा, उसको समझ नहीं आता है, तो वो ऊर्जा उसको क्या करती, कोई भी चीज उठाएगा उसको देखेगा, उल्टेगा पलटेगा फेंकेगा। मथुरा में तो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, आपको चश्मा और घड़ी फ्रूटी की बॉटल तब वो देते हैं, एक्चुअली ले लेते हैं। मैंने आंख के सामने देखा है सब, हमें समझाया गया था, मैं तो चश्मा पहनता नहीं हूं और घड़ी हाथ से नहीं लेंगे, पर यू शुड बी केयरफुल। लेकिन मेरे एक मित्र थे, उनका चश्मा, अब वो हाई पावर चश्मा था, उन्होंने सीरियसली मैं जा रहा हूँ ग्रुप में क्या ले, झट से लेके चला गया। उसके बाद उसको फ्रूटी की बॉटल सब दिया, उन्होंने फेंकी, तो उसकी लॉजिक क्या होती है कि फेंकोगे तो वो पकड़ेगा और छोड़ देगा। अब नीचे नाला था तो चश्मा नाले में गिर गया। तो ये बिकॉज मन की जो ऊर्जा आती है ना, इसलिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है। वैसे सिंह को देखें तो बैठा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं, खासकर जब उसका, लेकिन वो अजगर का इनर्शिया नहीं है, वो इमोबिलिटी ऑफ द लायन, इसलिए उसको क्वाइट पावर कहा गया। उठा अगर वो दहाड़ा उसने तो हिल जाएगा आसपास। तो ये सारी चीजें ये पशुओं में ये ऑटोमेटिक हैं। तो पावर ऑफ फिजिकल इमोबिलिटी, और इसीलिए हम लोग इस ऊर्जा को ज्यादा देर संवरण नहीं कर पाते। फिर साथ में क्या होता है कि केवल हमारे अंदर की प्राणिक ऊर्जा को वो नहीं बैलेंस कर रहा है, अर्थ की एनर्जी को भी उसके साथ भी इंटरचेंज हो रहा है। ये एक इंटरचेंज है जिसके बारे में हम नहीं जानते। इन द कॉन्सिक्वेंट इंटरचेंज एंड बैलेंसिंग बिटवीन द मूवमेंट एंड इंटरैक्शन ऑफ द वाइटल एनर्जीज नॉर्मली एट वर्क इन द बॉडी एंड देयर इंटरचेंज विद those which act upon it from outside, whether the energies of others or of the general pranic force variously active in the environment, there is a constant precarious balancing and adjustment which may at any moment go wrong. इसलिए बहुत ज्यादा इंटेग्रल योग में भी माने तो बहुत ही सिनेमा क्यों दिखाया जाता है यहाँ की, यानी कि सिनेमा देखने में कोई बुराई है, माँ बाहर मना करती थी। जब आप बाहर सिनेमा में जाते हैं तो अनलेस यू आर ए सिद्ध योगी, यू आर एक्सपोज्ड टू ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द पीपल हु आर इन दैट एनवायरनमेंट, और फिर वो आपको इंपैक्ट करती हैं। इज अ ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन। और अगर इसको माने खासकर का सेक्सुअल एक्टिविटी में ये बहुत इंटेंस हो जाती है, क्योंकि तब तो आपने खुली छूट दे दी है कि चलो तुम्हारी ऊर्जा है मेरे अंदर, मेरी तुम्हारे अंदर। तो इसलिए योग में कई बार सिंगल पार्टनर की बात इसलिए की जाती है, क्योंकि आपका नहीं तो वो ऊर्जाएं जगह जगह कहाँ कहाँ से आ रही हैं। आप ओशियन बन गए तो बात अलग है, पर बाय एंड लार्ज इट्स लाइक इट हैज इट्स डेंजर्स बिकॉज यू आर इंटरचेंज विद द एनवायरनमेंट। इसीलिए सत्संग की बात कही जाती है, इसलिए हर जगह जा करके, अगेन परफेक्टेड योगी कैन डू एनीथिंग, पर वन शुड नो द लिमिट्स कि भाई हम प्रीमेच्योरली कोई चीज कर रहे हैं तो इट कैन बी डेंजरस एंड हार्मफुल। एवरी ऑब्स्ट्रक्शन, एवरी डिफेक्ट, एवरी एक्सेस, एवरी लीजन क्रिएट्स इम्प्योरिटीज एंड डिसऑर्डर्स। नेचर मैनेजेज इट ऑल वेल एनफ फॉर हर ओन पर्पसेज। जिंदगी में ऑर्डनरी चीजों के लिए जरूरत नहीं है योग की। when left to herself. But the moment the blundering mind and will of the human being interfere with her habits and her vital instincts and intuitions, especially when they create false or artificial habits. माँ बताती है ना कि वो बंदर को जब किसी ने अल्कोहल पीने को दिया, उसने टेस्ट किया, ना केवल फेंका, उसके बाद उसने कभी उसको टच नहीं किया. हमारा माइंड कैसे, अरे इट्स ए इन थिंग, इट्स कूल. तो अपनी हैबिट्स हमारी सारी, जो नेचर अपने अंदर जो चीजों को नॉर्मल कोर्स में, नेचर एक बैलेंस रखता है. अगर आप कुछ नहीं, केवल नेचर के हिसाब से, आपका नेचर बता देगा कौन कौन पिएगा वो इतनी कड़वी चीज को. और जिसके बाद ये नहीं कि आप कोई जागृत हो गए, आप मतलब आपका दिमाग घूम रहा है आपकी वो, लेकिन माइंड कैसे डिस्टॉर्ट करता है. अरे फ्रीडम है हमारी, हम जो चाहें करें. आप स्लेवरी की ओर जा रहे हो, उसको फ्रीडम कह रहे हो, सोचो. इट्स स्लेवरी. सिमिलरली पीपल अब्यूज, नाउ इट इज इट्स ट्रेंडी, तो कहते इट्स माई फ्रीडम. यू आर लूजिंग योर फ्रीडम प्रिसाइजली बाई बींग अब्यूजिव, क्योंकि आप ये वोकल इंस्ट्रूमेंट का मिस यूज कर रहे हो. लेकिन ये चीजें एक एवरेज व्यक्ति को नहीं समझ आती है. अब हठ योगी के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. Therefore, the first necessity of a greater status or action is to get rid of this disordered restlessness, to still the activity and to regulate it. अब देखिए, आप जब यहाँ काम करते हैं ना आश्रम के कंटेक्स्ट में, 6 घंटे 8 घंटे, अब आप बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द मदर, कहीं ना कहीं यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी और फॉर समथिंग एल्स, तो वो अपने आप आपकी एनर्जीज अब चैनलाइज होने लगी, खुलने लगी, कर्मयोग की प्रैक्टिस हुई. लेटर ऑन यू कैन बिकम डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, बट दैट इज मच लेटर. तो ये सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं. फिर वो बताते हैं कि जैसे जैसे फिर रिलीज होती है ऊर्जा, शरीर मन प्राण, मन का तो नहीं यहां पे, प्राण परफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट बनने लगता है. इट इज फ्रीड फ्रॉम इट्स रेडी लाइबिलिटी टू फिटीग, उसका एक लक्षण ये होता है. कहते हैं ना, देखिए रामायण में कहाँ कहाँ पर है वो परफेक्ट हठ योगी हैं हनुमान जी. तो क्या कहते हैं जब वो जा रहे हैं छलांग लगा के, ये कहानियों के माध्यम से, तो मैनाक पर्वत निकल करके आता है, कहता है आप थोड़ी देर विश्राम कर ले, मेरे ऊपर कुछ खाना पीना मैं दूंगा. तो राम जी क्या, तो हनुमान जी क्या कहते हैं, बिना राम के काज के मोहे कहाँ विश्राम. ये होती है एक योगी की रियल अवस्था, कि वो विश्राम, वो काम करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भगवान की सेवा है, वो वर्कहॉलिक नहीं है, परंतु भगवान के काम को श्रिंक नहीं कर सकता. तो इस तरह उसके अंदर फटीग, क्योंकि अब भगवान ऊर्जा देते हैं, ये नहीं कि ही विल नॉट स्लीप, ही विल स्लीप रेस्ट, पर फटीग जो होता है, फटीग बीमारियाँ, माँ एक जगह कहती हैं, जब कोई कहता था बीमार, माँ कहती थी माई चाइल्ड हैज़ नो बिजनेस टू फॉल इल, यहाँ तक कहा है माने, भाई तुम भगवान का काम करो उसके बाद भी तुम बीमार पड़े तो ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है. मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ किया एक्सेस या जो भी. इट इज टू बी ऑब्जर्व्ड ऑल्सो दैट देर आर एनॉर्मस वेराइटी ऑफ आसनास इन हठ योगा, रनिंग इन देयर फुलनेस बियॉन्ड द नंबर ऑफ 80. अब तो लेट अस बी वेरी क्लियर, ये 15 आसन जो करते हैं, 5 लेटे 5 खड़े 5 बैठे, आसन ठीक है, हठ योगी नहीं है ये. हठ योगी तो 84 ना जाने कितने आसन करते हैं, मिनिमम है 80. और शेरिंद कहते हैं ओरिजिनल जब ये योग दिया गया था मनुष्य को, लेमुरियन किंग, देवर मैनी मैनी मोर, क्योंकि उनके पास शरीर ही माध्यम था, देवर येट टू अवेकन इन देयर इनर बींग. Running in their fullness beyond the number of 80, some of them of the most complicated and difficult character. इसलिए हठ योग is not meant for everybody. आसन is for everybody again and again. It serves also to alter the relation of the physical energy in the body to the earth energy. तो उसमें क्या होता है, lightening of the heavy hold of the latter, उत्थापन, पार्शियल लेविटेशन. ये शेरविंद का अपना एक्सपीरियंस है, सब सिद्धियों का उनका, ब्रीदिंग का स्टॉप होना, हार्ट बीट, दे हैज एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस. सावित्री में इसका वर्णन भी है, यू कैन कंटिन्यू टू लिव, क्योंकि वो एक मैकेनिज्म है, वो टूल है. अब आप जो प्राण है वो 5 प्राण उसकी डायरेक्ट भी रिसीव कर सकता है. इसीलिए कई बार ऐसा हुआ भी है कि भाई कोई इमारत गिर गई, बच्चा दबा रह गया फॉर 5 डेज. अब लोग इसको स्टडी करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, पर मैकेनिज्म्स हैं शरीर के अंदर, नॉर्मली वो एक्टिव नहीं होती हैं और ये तो एक इमरजेंसी की बात है, पर योगी उसको एक्टिव कर सकता है. और जब वो उनको एक्टिवेट कर देता है तो वो बहुत समय तक अगर नहीं भी ले श्वास तो ही कैन कंटिन्यू. बट इज वेरी वेरी रेयर. पॉल ब्रंटन ने तो एक हठ योगी का डॉक्यूमेंट किया है जो यहीं पास में कहीं था, आई थिंक पता नहीं विल्लुपुरम की तरह या तिरुवन्नमलाई की तरह, आई फॉरगॉटन, आई रेड इज बुक इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया. वो यहाँ भी आया था, माँ ने मना किया था, डोंट राइट एनीथिंग अबाउट दिस योगा, वो क्या लिखेगा, क्या अर्थ का अनर्थ क्या समय, बट ही केम टुक ब्लेसिंग्स ऑफ द मदर. उत्थापन और पार्शियल लेविटेशन, द ग्रॉस बॉडी बिगिन्स टू एक्वायर समथिंग ऑफ द नेचर ऑफ द सटल बॉडी एंड टू पजेस समथिंग ऑफ इट्स रिलेशन विद द लाइफ एनर्जी दैट बिकम्स ए ग्रेटर फोर्स मोर पावरफुली फेल्ट एंड येट कैपेबल ऑफ ए लाइटर एंड फ्रीयर एंड मोर रिजॉल्वेबल फिजिकल एक्शन. आपके शरीर में अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतरामा, राम दूत. अब देखिए कितना सुंदर है, उनके अतुलित बल का स्रोत क्या है, राम दूत अतुलित बल धामा. राम जी के दूत हैं वो, साधारण नहीं है. पावर्स विच कल्मिनेट इन द हठ योगिक सिद्धिज और एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स ऑफ गरिमा महिमा अनिमा एंड लघिमा, जिनकी हम बात कर चुके हैं. मोर ओवर द लाइफ सीजेस टू बी एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द एक्शन ऑफ द फिजिकल ऑर्गन्स एंड फंक्शनिंग सच एज द हार्ट बीट एंड द ब्रीदिंग. इसीलिए जब इस तरह के किसी योगी की मृत्यु होती है सो कॉल्ड, तो यू शुड अलाउ टाइम. माँ कहती थी मिनिमम 24 आवर्स. सुनते नहीं लोगों को, एक अलग बात है. सिंपली बिकॉज सेसेशन ऑफ ब्रेथ एंड हार्ट बीट डज नॉट नेसेसरली मीन्स डेथ द वे वी अंडरस्टैंड. फॉर ए लॉन्ग टाइम इट कैन कंटिन्यू. अब शेयरविंद के शरीर में देखिए 111 घंटे तक कोई साइंस नहीं आ रहे हैं डेथ के, स्टिफनेस नहीं आ रही है, बॉडी इज ए ग्लो विद ए लाइट, बट ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड, हार्ट बीट हैज स्टॉप्ड. इवन विद मदर फॉर गुड अबाउट 48 आवर्स, बट वो तो रूपांतरण की सिद्धि, वो तो एक अलग ही चीज थी. Moreover, the life ceases to be entirely dependent on the action of the physical organs and functionings such as the heartbeats and the breathing. These can in the end be suspended without cessation of or lesion to its life. Ye sab unke anubhav hain jo unhone. But the first objects of the pranayam are to purify the nervous system, to circulate the life energy through all the nerves without obstruction, disorder or irregularity, and to acquire a complete control of its functionings. So Sri Aurobindo ke yog mein kaun sa pranayam kiya jata hai jo recommended hai Sri Aurobindo mata ji ke sath, jo karna hai kariye otherwise. Lekin isme keval nadi shuddhi ki baat ki hai Sri Aurobindo mata ji ne. If one wants to do, nadi shuddhi bahut saral hai. To aapne dekha hoga is pe studies bhi hain, aap jab sote hain ek taraf to ya kabhi kabhi chalte firte, you will see ki aapki agar ऑब्जर्व करें सडनली, मतलब पागल नहीं हो जाएं कि हम ऑब्जर्व करें सारे समय, लोग कहेंगे भाई डॉक्टर को दिखाओ. नहीं तो आप कभी रैंडमली ऑब्जर्व करिएगा कि एक समय में जनरली एक नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव होता है, हालांकि दोनों खुले हैं. इवन आप अगर श्वास लेंगे तो एक नॉस्ट्रिल और इसकी रिवर्स नाड़ी एक्टिव होती है, ये साइंस है एक्चुअली. और नींद में आप देखें कि लेफ्ट करवट और राइट करवट में आपके थॉट्स बदल जाते हैं, ये ट्रिक है एक्चुअली. कभी जब ये हो रहा हो ना कि ये दिमाग में तो थोड़ा करवट ही बदल लीजिए, हाँ किसी किसी के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है तो करवटे बदलते रहे सारी रात, हम आपकी कसम अलग बात है. तो माने पूरा ही भर गया है कूड़ा कचरा, पर अदरवाइज जस्ट टर्न सम टाइम, बिकॉज जब ये दूसरी नॉस्ट्रिल परफोर्स एक्टिव होती है तो आपकी नाड़ी चेंज हो जाएगी. नाड़ी चेंज होगी तो उसका इफेक्ट रहेगा. आइडियल स्लीप में दोनों की बैलेंस होने चाहिए. सुषुम्ना अवेकेंड है तो वो एक अलग बात है, खैर वो एक अलग विज्ञान है, अब यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे. कि प्राणायाम को मेनली जो फ्लो ऑफ प्राणिक करंट है सूक्ष्म नाड़ियों के द्वारा, उस पर आपको इस योग में भी देखेंगे आप एक पॉइंट के बाद, खासकर एल्डरली मेल्स ही सडनली पेन्स एंड एक्स कमिंग अप, और लोगों को समझ नहीं आता है क्यों ये हो रहा है. इसलिए हो रहा है क्योंकि आप नर्व्स पे आपके प्रेशर पड़ रहा है रूपांतरण का, तो जब प्रेशर पड़ता है तो वो टड़क टड़क कहते हैं ना, वो दे स्टार्ट रेजिस्टिंग, बट इट्स ए प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू इट। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएं तो आप इस प्रोसेस में चले जाएंगे, डॉक्टर के पास गए ऑर्थोपेडिक या कोई, तो फिर वो आप दूसरी प्रोसेस में चले गए, घुटना बदलो, ये बदलो, अंत में कहीं भाई शरीर ही बदल लो और क्या, यही है एंड पॉइंट, तो यही है। सो ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और इस प्रकार से शरीर का एक रिद्म। अंत में द प्राणा हैज अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस ए फाइव फोल्ड मूवमेंट परवेडिंग ऑल द नर्वस सिस्टम एंड द होल मेटीरियल बॉडी एंड डिटर्मिनिंग ऑल इट्स फंक्शन। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ब्रीदिंग जो है वो केवल एक बाहरी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जैसे आप कोई चीज करने के लिए आप एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं, लेकिन चीज क्या है असल, वो प्राण है। प्राण ऊर्जा एक कॉम्प्लिकेटेड इवोल्यूशन के थ्रू बना है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर वो इसमें जा रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रहा है, लंग से मिल करके फिर आपको एनर्जी रिलीज कर रहा है और वो ATP बन रही है। इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो इवोल्यूशन की प्रोसेस से आया है। पर एक दूसरा भी सिस्टम है जो हमेशा सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म जीवन के अंदर है और आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वहां पर फाइव फोल्ड प्राण, यानी पांच की जो पांच गति है, एक जो सबसे ऊपर की तरफ देखा होगा, कभी कभी जब हम बड़े खो जाते हैं भगवान के स्मरण में या केवल एक उच्च कोई पढ़ते पढ़ते होता है ना, घंटों हमको पता नहीं चलता, भूख नहीं लगती, ऊर्जा कहां से आ रही है। देखिए दूसरा है स्पीच के माध्यम से, तीसरा है माने इस लेवल पर, तीसरा है हार्ट में वो जो बैलेंसिंग करता है। सो दे आर टू हायर, स्पीच तो डिग्रेड करके उसकी बात नहीं, सब जगह लोअर मूवमेंट पहुंच गया है, माथे के अंदर भी कचरा भर गया, लेकिन वैसे अदरवाइज दीज आर द टू हायर एंड देन देर इज, इसलिए स्पीच की इतनी इंपॉर्टेंस, मंत्र का इतना इंपॉर्टेंस, देन देर इज द बैलेंसिंग। फिर देर आर टू लोअर मूवमेंट्स, तो एक है जो केवल आपके एम्बिशन, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी एकदम लोएस्ट में जाती है, पर एम्बिशन वगैरह से जुड़ी हुई है, डिजायर्स, नॉर्मल डिजायर्स, और लास्ट इज द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड फूड से जुड़ी हुई, जिसमें आपकी रिलीज बॉडीली ऑर्गन से जो मलमूत्र विसर्जन। अब देखिए सब अब नाम ठीक है उसको, आप उड़ान व्यान समान अपान वो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कि नाम आपको याद हो गया, पर ये मेन है। तो अब कुछ लोग हैं जो हमेशा उड़ान की अवस्था में रहते हैं, दे कॉन्शियसनेस टर्न अपवर्ड, कई बार उनको इवन यूरिनरी ब्लॉकेज, क्योंकि वो चेतना ऊर्ध्वगामी हो गई है, तो ये भी समस्या होती, मतलब बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड है, पूरा विज्ञान है। बट मेन चीज है ये फाइव फोल्ड करेंट है प्राण की, ये बैलेंस्ड होने चाहिए कम से कम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के अंदर। तो ये फाइव फोल्ड मूवमेंट, अंत में ही इज एबल टू डायरेक्ट द प्राणा थ्रू ऑल द नाड़ीज और नर्व चैनल्स ऑफ हिज सिस्टम। ये फाइव फोल्ड जो मूवमेंट है फिर उससे अलग अलग नाड़ी में जा रहा है, तो जो योगी है वो इस प्राण को अधिकृत होता है, उसके अधिकार में नहीं होते हैं, प्राण उनके अधिकार में है, तो उसको वो डायरेक्ट। तभी आपने देखा ना पांच घोड़े जो पूरे रथ के, तो घोड़े अगर आपको ले जा रहे हैं मतलब आप उसके अधिकार में, अरे मन किया हो चलो वहां चलते हैं, अरे वो चीज देखी बड़ा अच्छा लग रहा है मजा आएगा, तो घोड़े आपको ले जा रहे हैं दयनीय अवस्था है। जब आप कहते भाई जाऊंगा मैं डिसाइड करूंगा, अब घोड़े चाहिए आपको जाने के लिए, लेकिन आप उसके मास्टर हैं जहां भी जा रहे हैं घोड़े को, लेकिन आप डिसाइड कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तो यहां पर प्राण के फाइव फोल्ड मूवमेंट की बात है। ही बिकम्स अवेयर ऑफ इट्स एक्शन इन द सिक्स चक्रास ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इज एबल टू ओपन इट अप इन ईच बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लिमिटेड हैबिचुअल एंड मैकेनिकल वर्किंग। इस योग में, इंटेग्रल योग में ये ऐसे नहीं होता है, इंटेग्रल योग में ये ऊपर से उधर्व मुखी कुंडली, जैसे जैसे माँ की शक्ति उतरती है माइंड खुल जाएगा तो विशाल यूनिवर्सल माइंड में प्रवेश कर जाएगा, आपकी स्पीच खुल जाएगी तो वो ट्यून डिवाइन, इट विल ट्यून इटसेल्फ टू द डिवाइन पोरिंग्स, आपका हृदय खुल जाएगा तो यूनिवर्सल प्रेम उसके अंदर आ जाएगा, आपकी प्राण ऊर्जा खुल जाएगी तो लिमिटलेस एनर्जी टू डू द डिवाइन वर्क, एम्बिशन वाला पार्ट चेंज हो गया, और अगर आपकी भौतिक शरीर की जो लास्ट कॉन्क्वेस्ट है वो खुल गई तो फिर तो भगवान के वाहन बन गए। Thus, a complete mastery of the body and the life and a free and effective use of them established upon a purification of their workings is founded as a basis for the higher aims of Hatha Yoga. Jai Ma.